Krishna, Hare Krishna,
Krishna, Krishna,
Krishna, Krishna, Hare Hare,
Krishna, Krishna, Hare
Hare, Rama, Hare Rama,
Rama,
Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna. आप सबका स्वागत है श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर स्कान वृंदावन प्रातः काल श्रीमद भागवत का प्रवचन। श्रीमद भागवत का तीसरा स्कंद और उसका 20वां अध्याय, उसका भी अंतिम श्लोक आज चर्चा का विषय है। अध्याय का नाम है मैत्रेय और विदुर के बीच में बातचीत, संवाद। ये संवाद शब्द बहुत सुंदर है, जैसे श्री कृष्ण अर्जुन संवाद भगवद गीता में लिखा है। संवाद किसके बीच में होता है? गुरु और शिष्य के बीच में। जो आध्यात्मिक तत्वों को जानने के लिए बातचीत की जाए उसको संवाद बोलते हैं, बाकी सब विवाद होता है। इसको संवाद कहते हैं, इसलिए कृष्ण अर्जुन संवाद भगवद गीता को बोलते हैं। तो और यहां मैत्रेय गुरु के स्थान पर बैठे हैं, विदुर जी शिष्य के स्थान के ऊपर बैठे हैं। अथवा दो गंभीर शिष्यों के बीच में, शिक्षकों के बीच में चर्चा हो आध्यात्मिक विषय को जानने की, उसको संवाद बोलते हैं। तो ये संवाद की परिभाषा है। कहां हो रहा है ये संवाद? ये संवाद हो रहा है गंगा जी के तट पे, हरिद्वार में। हरिद्वार में ये बातचीत हो रही है। ये बातचीत किस समय पे हो रही है? महाभारत काल के बाद की बात है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया है, उसके बाद 30 से अधिक वर्ष और भी बीत चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण इस धरती से अपनी लीला को समाप्त करके अपने स्वधाम जा चुके हैं, और जाते समय दो व्यक्तियों को तो शिक्षा दी और दो को आदेश दिया। एक शिक्षा दी उद्धव को, उद्धव गीता के नाम से प्रसिद्ध है, और एक शिक्षा दी मैत्रेय ऋषि को, और आदेश एक दिया दारुक को, और एक संदेश भेजा अर्जुन को। ये भगवान अंतिम समय जाते हुए केवल इन चार व्यक्तियों से ही मिले, और एक और व्यक्ति मिला था उसको तो मुक्ति के रास्ते पे भेज दिया, और वो था जरा, जिसने तीर मारा था, जिसने भगवान के चरण में तीर मारा, वो भागते भगवान के चरणों में गिरा। भगवान का तुम चलो ऊपर धाम में, मैं बाद में आता। तो भगवान ने उसका भी उद्धार किया। तो ये अंत समय भगवान के निकट में ये पांच व्यक्ति थे, दो को शिक्षा, एक को आदेश, एक के लिए संदेश। आदेश ये था कि दारुक जल्दी से द्वारका से निकलो कि मेरे जाते ही द्वारका समुद्र में वापस चली जाएगी, और संदेश ये था अर्जुन के कि हमारे रानियों को यहां से लेके और हस्तिनापुर चले जाओ। अब यहां से उद्धव आया है और इसी वृंदावन में जमुना के तट पे विदुर से मिला है, और फिर विदुर और विदुर की और उद्धव की यहां बातचीत हुई है। ये तीसरे स्कंद के पहले तीन अध्यायों का, तीन चार अध्यायों का यही जो है वो संवाद है। और जब उद्धव ने कहा कि श्री कृष्ण भगवान ने जाने से पहले मैत्रेय ऋषि को आपको शिक्षा देने के लिए बोला है, तो विदुर के आंखों में आंसू आए कि अंत समय जाते हुए भगवान मेरे को याद किया, मेरा नाम उनके हृदय पे आया। तो ये विदुर के लिए तो बहुत बड़ी हर्ष की बात थी कि इस भूमंडल में, केवल इस भूमंडल में नहीं, भगवान तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के मालिक है, कि विदुर का नाम लेके याद किया है। फिर विदुर यहां से हरिद्वार चले गए और बातचीत उनकी हो रही है। तीसरा और चौथा स्कंद पूरा विदुर और मैत्रेय संवाद है। तो इस अध्याय के शुरू में मैत्रेय जी से पूछते हैं, विदुर के ब्रह्मा जी की जब उत्पत्ति हो ही गई गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि कमल से निकले हुए फूल के ऊपर, कमल के फूल के ऊपर, फिर ब्रह्मा जी ने तपस्या की, भगवान के दर्शन भी किए, विष्णु जी से हाथ मिलाया जाकर, फिर भगवान विष्णु ने उसको कहा कि तुम अपूर्व जैसी सृष्टि करो, तो उन्होंने सृष्टि की। तो जो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की वो कैसी थी और जो प्रजापति बाद में उत्पन्न हुए उन्होंने क्या किया, तो ये जानना चाह रहे हैं विदुर सृष्टि के विषय में। और सृष्टि के विषय में जब कुछ जानते हैं तो उसको सर्ग कहते हैं कि उत्पत्ति कैसे हुई, सृष्टि कैसे हुई, उसको सर्ग कहते हैं। और यहां 19वें अध्याय में समापत क्या हुआ है आकर, पहला जो पहला विषय है तीसरे स्कंद का वो 19वें अध्याय में आकर समापत होता है, और वो विषय है वराहदेव भगवान का प्रकट्य और पृथ्वी को अपने स्थान के ऊपर स्थापित करना। ये वराहदेव के अवतार का वर्णन है, क्योंकि सृष्टि होनी है तो पृथ्वी के ऊपर होनी है, तो पृथ्वी है ही नहीं तो सृष्टि कहां होगी। तो वराहदेव पृथ्वी को लाकर अपने स्थान पे स्थापित किया और हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। इसके बाद अब ब्रह्मा जी को किसने कहा था ये कि सृष्टि नहीं है, पृथ्वी नहीं है, तो मनु आदि ने, जब ब्रह्मा जी ने मनु को पैदा किया, शत्रुपा को पैदा किया, ऋषियों को पैदा किया कि कहा कि आप सृष्टि करो, उन्होंने कहा बाबा सृष्टि करें कहां, पृथ्वी तो है नहीं। तब ब्रह्मा जी चिंतन में बैठे तो उनकी नासिका से छोटा सा वराह का रूप प्रकट हुआ, फिर ये वराहदेव की पूरी कथा चलती है। तो अब वो सृष्टि क्रम जो पूरा नहीं हुआ है उसको आगे पूछना चाह रहे हैं कि उसके बाद पृथ्वी के ऊपर सृष्टि कैसे हुई। तो जब सृष्टि होगी तो इस सृष्टि को फिर चलाया कैसे जाएगा, इसलिए 20वें अध्याय के बाद ये 20वां अध्याय और आगे दूसरा जो विभाग है तीसरे स्कंद का, भगवान कपिल देव का प्रकट्य और सृष्टि कैसे चलाई जाए, भगवान की भक्ति से कैसे भगवान को प्राप्त किया जाए, ज्ञान प्रदान कपिल देव के अवतार का वर्णन आगे वाले 13 अध्यायों में आएगा, 20 से लेकर 33 तक। तो ब्रह्मा जी ने पहले दो प्राणी पैदा किए और एक ने कहा कि हमको बहुत भूख लगी है, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, दूसरे ने कहा हम तो आपको खा जाएंगे। ब्रह्मा जी ने ये कहां से पैदा हुआ, तो एक को नाम हुआ यक्ष, एक का नाम हुआ राक्षस। ये पहले दो प्राणी ब्रह्मा जी ने पैदा किए, यक्ष और राक्षस। और प्रभुपाद जी ने लिखा है अभी भी सृष्टि के ऊपर ऐसे बहुत से राक्षस हैं जो अपने दादा को मारकर और उसके ऊपर बड़ा उत्सव मनाते हैं, मार के खा के और उसके ऊपर उत्सव मनाते हैं, ऐसे भी अभी दुनिया में लोग हैं। और फिर सृष्टि भूतों की पिशाचों की हुई, तो भूत भी कोई जोनी होती है, फिर पितरों की सृष्टि हुई, ऐसे सृष्टियों का वर्णन है। एक सृष्टि बहुत खतरनाक हुई बीच में, वो किसकी सृष्टि है, डीमंस की, जो ब्रह्मा जी के ऊपर ही भोग की वासना से आ गए। ब्रह्मा जी पहले तो मुस्कुराए, हंसने लगे और फिर डर के मारे भगवान के पास भाग गए, करूं क्या इससे। तो ये जो एक लिंग का भाव है, जो जो यौन का जिसको क्या कहेंगे, वो राक्षसों में होता है। प्रभुपाद ने उसके लिए एक शब्द लिखा है कि डिमोनिक नेचर है होमोसेक्सुअल। तो ये ब्रह्मा जी के समय में उत्पत्ति उसकी व्यूज का वर्णन है। फिर ब्रह्मा जी ने कहा ये सारे मुसीबतें बहुत हो गई, अब क्या करना चाहिए। और फिर उस शरीर को ही ब्रह्मा जी ने छोड़ा, वो कौन सा समय हुआ, वो संध्या वाला समय हुआ। और संध्या वाला समय इतना सुंदर हुआ कि उन असुरन समझा कि ये सुंदर स्त्री है और उसके पीछे भागने लगे। इसका वर्णन करके ये बताते हैं प्रभुपाद जी ने, बहुत सुंदर लिखा है कि प्रातः काल सुबह वाली जो संध्या का समय है वो भगवान के भजन के लिए होता है, सत्वगुण का होता है, और शाम जैसे होने लगती है सूर्य अस्त होते, काम भोग वालों के लिए अच्छा टाइम शुरू हो जाता है। तो वो असुरी प्रवृत्ति के जो जो रजोगुण की व्यक्ति है वो शाम का इंतजार करते हैं कि कब सूर्य अस्त हो तो हमारे भोग का समय शुरू होगा। तो ये दो संध्याओं में अंतर है कि प्रातःकाल संध्या आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर ब्रह्मा जी बड़े खुश बैठे थे तो गंधर्व जो गाते हैं और फिर अप्सराएं जो नृत्य करती हैं उनकी उत्पत्ति की, फिर सिद्ध, फिर चारण, फिर जो नहीं दिखते हैं अंतर ध्यान रहते हैं सिद्ध, उनका उत्पत्ति की। फिर बैठे बैठे ब्रह्मा जी को बड़ा अच्छा लगा, उसने अपने ही शरीर के आकार के पुरुष पैदा किए, मानव पैदा किया, और सब खुश हो गए, बोले ये तो आपने बहुत अच्छा पैदा किया है, क्योंकि अब ये यज्ञ आदि करेगा और इससे सृष्टि का कर्म बड़ी अच्छी तरह से चलेगा। मानव के बाद ब्रह्मा जी ने ऋषियों की उत्पत्ति की, क्योंकि मानव किस लिए पैदा किए, इस सृष्टि को उसको कहा जाता है अर्थ, अर्थव्यवस्था, इस संचालन सृष्टि का चलाने के लिए, लेकिन उसको सिखाने के लिए, उसका मार्गदर्शन करने के लिए ऋषियों की जरूरत है। तो आज का श्लोक है यह है कि उन ऋषियों की उत्पत्ति की, उसके गुण कैसे थे, वो ब्रह्मा जी ने किस भाव से बैठ के उनको उत्पन्न किया, और उसके बाद इन ऋषियों में जिनको प्रजापति आगे कहेंगे आकर, कुछ ऋषि कुछ प्रजापति, तो उसमें फिर कर्दम मुनि का वर्णन आ जाएगा, फिर मनु के पुत्र पुत्रियों का वर्णन आएगा, फिर ये सारे जो प्रजापति हैं इन्होंने कैसे उत्पत्ति की इसका वर्णन आएगा। तो ये ऋषि जितने भी उत्पन्न हुए उन ऋषियों को प्रजापतियों ने अपनी कन्याएं विवाह कर दी। अब देवहूति की नौ के ना कन्याएं हुई, वो सप्त ऋषियों को दी, फिर और ऋषियों को कैसे कन्याएं दी। तो ये जो आगे चल के प्रजा का प्रजापतियों का वर्णन है, ये अब क्रम कथा का शुरू हो रहा है। लेकिन क्या चीज जरूरी है सृष्टि में, वो आज का श्लोक हमको बताएगा, और ये हमारी शिक्षा का मुख्य श्लोक है आज का। तो आइए इसकी आवृत्ति करते हैं। ये श्लोक विदुर जी सुन रहे हैं और मैत्रेय जी कह रहे हैं। ये वर्णन व्यास देव ने भागवत में किया है और सुखदेव जी ने परीक्षित महाराज को सुनाया है। सुत गोस्वामी इसी कथा को नैमिषारण्य में कर रहे हैं, सनकादि ऋषि सुन रहे हैं, और प्रभुपाद जी कहते हैं वही हमने आप सबके लिए आधुनिक भाषाओं में लिखा है, इसी को परंपरा कहते हैं, हमने उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं किया। तो आइए इस श्लोक का अनुवर्त आवृत्ति करेंगे। तेभ्यश्चैकायक्षस्वस्य देहस्यांसम अदाद अजह यत्तत् समाधि योगरधि तपो विद्या व्रक्तिमात् तेभ्यश्चैकैकाशः स्वस्य देहस्यांसम अदात अजः यतत् समाधि योगरधि तपो विद्या व्रक्तिमा तेभ्यश्चैकैकशः स्वस्य देहस्यांसम अदात अजः यतत् समाधि योग ऋद्धि तपो विद्या व्रक्तिमत्। तपो विद्याव्रत्तिमा। एक बोलिए बोलिए। तो इसके एक शब्द का अर्थ पढ़ने से पहले कल वाले श्लोक का अनुवाद पढ़ लेते हैं ताकि उससे तेभ्य का मतलब उनका मतलब कल वाला श्लोक। तो कल जो नहीं आए हैं वो भी सुन लीजिए। फिर आत्मभू जीवित प्राणी ब्रह्मा ने, आत्मभू अपने आप प्रकट हुआ, उसका माता पिता कोई नहीं था इसलिए आत्मभू कहते हैं। ब्रह्मा ने क्या किया, अपने आप को कठोर तप पूजा मानसिक एकाग्रता तथा भक्ति तलीनता से संचित एवं निष्काम भाव से अपनी इंद्रियों को वश में करते हुए महर्षियों को अपने पुत्रों को प्रजा के रूप में उत्पन्न किया। तो शब्द है क्या, महर्षियों को प्रजा को उत्पन्न किया। तो इसका मतलब जब कोई महर्षि अथवा कोई बहुत संत साधु पुरुष उत्पन्न संसार में करना हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए, कठोर तप पूजा मानसिक एकाग्रता भक्ति की तल्लीनता इंद्रियों को वश में करना। ये चीजें होने से अच्छा संतान पैदा होता है, ये संकेत है आज के श्लोक के। अभी शब्दों को सुने, तेभ्य उनको मतलब उस प्रजा को जो ब्रह्मा ने तप के बाद पैदा की, मतलब जो ऋषि थे। चा तथा एकैकशः हर एक को स्वस्य अपने देहस्य देह का अंशम अंशभाग अदात प्रदान किया अजह अजन्मा ब्रह्मा ने। तो जितने ऋषि पैदा किए थे उनको उन्होंने अपने अपने देह का कुछ भाग प्रदान किया। अब या जो तार वह समाधि गहन ध्यान योगा मन की एकाग्रता वृद्धि नैसर्गिक शक्ति तप तपस्या विद्या ज्ञान वृत्ति वैराग्य मत युक्त। अनुवाद एवं तात्पर्य परम पूज्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। ब्रह्मांड के अजन्मा सृष्टा ब्रह्मा ने इन पुत्रों में से प्रत्येक को अपने शरीर का एक एक अंश प्रदान किया जो गहन चिंतन मानसिक एकाग्रता नैसर्गिक शक्ति तपस्या पूजा तथा वैराग्य सुख के लक्षणों से युक्त था। अब थोड़ी देर के लिए ऐसे आगे जाने से पहले विचार कीजिए, हम कहते हैं ब्रह्मा के जो जो मन की एकाग्रता और समाधि था वो चार कुमारों को दे दिया। ऐसे समझ में क्या किसको दिया, जो भक्ति उनके हृदय में थी नारद जी को दे दी। तो ज्ञान था किसको दिया, जो जो उसके शरीर में विशेषताएं थी प्रजापतियों को, प्रजा उत्पत्ति की शक्ति दे दी। तो ये ऐसे समझना चाहिए क्या क्या अपने शरीर से ब्रह्मा ने किस किस को दिया, ये आगे हमको मिलेगा कि अपने शरीर से तपस्या करने की शक्ति किसको दी। जैसे कर्दम को तपस्या की शक्ति, बहुत तपस्या कर्दम ने की, वो ब्रह्मा के ही छाया रूप से प्रकट हुए हैं। तो इन ऋषियों को ये सब करने की अपने शरीर के अंश से ब्रह्मा जी ने प्रदान किया। श्री प्रभुपाद लिखते हैं श्लोक में व्यक्तिमत शब्द का अर्थ है वैराग्य गुण से युक्त। बाकी सारे तो पहले कुछ अध्यायों में इनके ऊपर चर्चा चलिए, किस कौन शब्दों के ऊपर, योग और समाधि के ऊपर चर्चा चली है, इसलिए वैराग्य के ऊपर आज चर्चा हो रही है। प्रभुपाद ने इससे पहले दो तीन शब्दों के ऊपर चर्चा की है पहले श्लोकों में, जैसे इसमें है क्या शब्द, क्या है मन की एकाग्रता, ये योग का उद्देश्य है। योग का अर्थ है मन वृत्तियों का निरोध करना, मन के वृत्तियों का निरोध करना, ये योग का अर्थ है। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं ये योग का अर्थ नहीं है केवल शरीर के कुछ अंगों को इधर उधर हिला के या नासिका से ऊपर नीचे सांस का कुछ ध्वनि करके और आधे घंटे के बाद समाधि का नाम देकर और फिर जाके चाय बीड़ी पिए, तो ये कौन सा योग हुआ। अभी थोड़ी देर के लिए योग आसन किया और फिर जाके चाय पिया, तो इसका मतलब तो योग का अर्थ तो समझा ही नहीं है। न इंद्रियां संयम में है और न मन ही का ही निरोध हुआ। एक प्रवचन हम परसों प्रभुपाद जी का सुन रहे थे, प्रभुपाद बोला ये तो योग को छोड़ो, हमने ऐसे तथाकथित भक्तों को देखा है गाते हैं, नृत्य करते हैं, नाचते हैं, और जैसे ही नृत्य समाप्त हुआ कहेंगे गला खुश हो गया, एक बीड़ी दे दो, बीड़ी एक बीड़ी। प्रभुपाद का एक प्रवचन है चेतन चैतन्य के ऊपर के वो किस बात को बात कर रहे हैं, अब संप्रदायें बहुत सी हो गई है, नृत्य कीर्तन ऐसे ही करते हैं जैसे हम करते हैं, नाचते कूदते सब कुछ ऐसे ही है, लेकिन उसके बाद उनका जीवन ही दूसरा है। और जो योग अभ्यास और समाधि वाले एक घंटे ऐसे ध्यान में बैठते हैं कि बस ये तो ऊपर ही चले गए और नीचे उतरते हैं सीधे होटल पे होते हैं। तो ये इन दोनों के ऊपर चर्चा हो चुकी है, आज बात है वैराग्य की। भौतिकवादी व्यक्तियों को आत्मबोध नहीं हो सकता, ये एक लाइन है प्रभुपाद जी, भौतिकवादी लोगों को आत्मबोध नहीं हो सकता। कहां से प्रभुपाद जी कहते हैं भोगेश्वर प्रसत्तानाम तया प्रत चेतसाम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधाओ न विद्यते, ये उसका अर्थ है। प्रभुपाद जी जब कुछ लिखते हैं तो उसके पीछे शास्त्र होता है। भोग ऐश्वर्य, भोग का मतलब संसार में मन मोज से जैसे आए वैसे करना, और ऐश्वर्य का मतलब दुनिया को दिखाने के लिए बहुत बड़ा अपना प्रतिष्ठा, बड़ा घर, बड़ा मकान, बड़ी गाड़ी, ये सब दिखावा ऐश्वर्य है। ये जिसकी भी इसमें आसक्ति होती है वो कभी भी समाधि के मार्ग में, मतलब भगवान के ध्यान में, चिंतन में नहीं लग सकता। ये इस लाइन एक का अर्थ है, सुन लीजिए दोबारा लाइन। भौतिकवादी, भौतिकवादी का मतलब भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, भोग और आश्रय में जिसकी आसक्ति है, सिर्फ आसक्ति भी नहीं लिखा है, प्रसक्ता नाम प्रकृष्टेन रूपेण, प्रकृष्ण रूपेण मतलब केवल उसी के लिए जी रहे और कोई उनका उद्देश्य नहीं है जीवन का। अब दुनिया में प्रायः जाके सब लोगों को देख काय के लिए जीते, उनसे पूछ लो काय के लिए जीते, कमाते क्यों है, भोग करेंगे यही ना, कमा क्यों रहे हैं, खा पी के मौज करेंगे इसलिए, और ज्यादा हो गया तो क्या करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, यही है कोई और उद्देश्य जीवन का। किसी आदमी से पूछो खाए के लिए काम कर रहे हैं, आहार निद्रा भय मैथुनी बस इतना ही है और कुछ है, इसके अलावा कोई उद्देश्य है क्या लोगों का। संसार के लोगों से जाके पूछकर तुम क्यों काम कर रहे हो, भरण पोषण के अलावा कुछ विचार है क्या, और पैसा जिस पर थोड़ा ज्यादा हो गया तो प्रतिष्ठा और दिखावे के काम को शुरू कर देगा। मैं एक सज्जन अपने सत्संगी से पूछा, इतना बड़ा पहले अच्छा सा फ्लैट था, सुखी रह रहे थे, दो कमरा, सफाई भी आराम से, अब इतनी बड़ी कोठी बनाई है और खुद ही कह रही है एक आता है नौकर एक जाता है, सुबह से शाम उनकी चौकीदारी करने में पूरा दिन लग जाता है। बोला ऐसे क्यों किया, मालिक को चौकीदारी करने में काम लग जाता है, फिर क्या करे, एक आया एक गया, एक आया एक गया, अरे ऐसे क्यों करे। बोला देखा देखिए, अगर ऐसा नहीं है तो दूसरे कहेंगे कि इनका तो छोटा दो रूम का फ्लैट है। अब केवल दिखाने के लिए अपने आप को परेशान के लिए अभी वो सारा दिन डंडा उठा के बैठे, कौन आया कौन, अपने घर में खुद चौकीदार होगी केवल दिखाने के लिए और कुछ नहीं। मैंने कभी आपको पहले कहा है, जून के महीने में गाड़ी में कोई ले जा रहा था तो शीशा नीचे उतारने को शुरू किया, बोला शीशा मत उतारो प्रभु जी, शीशा नहीं उतारा, भाई गर्मी हो रही है, बोला लोग कहेंगे गाड़ी महाराज के पास एसी, सेठ के पास एसी गाड़ी नहीं है, अरे तेरी एसी की तेजी मेरा सांस निकल रहा है। तेरे एसी की वजह से मेरा दम घुट रहा है, उन्होंने शीशा ऊपर चढ़ा के रखो, लोग कहेंगे सेठ की गाड़ी में एसी नहीं है, ये दिखावा नहीं है तो और क्या। तो ये भोगेश्वर है, जिन लोगों की केवल जीवन का उद्देश्य भोग और ऐश्वर्य का, ऐश्वर्य का मतलब प्रदर्शन, वैभव दिखाना। आप किसी के घर में जाते हैं तो लोग क्या दिखाते हैं, ये कमरा वो कमरा है, आजकल तो बाथरूम दिखाते हैं, ये लेट जा वो स्पेशल शावर हमारा लगा, जो कभी नहीं देखने वाला स्थान है वहीं सब ले जाते थे। एक हम घर में गए, नया घर बना, सब लाइन में खड़े, मैंने जाते कहा बोलो नया बाथरूम देख ले जाए, उन सवा लाख का है डेढ़ लाख का डिफरेंट शावर लगे हुए। अरे राम, भगवान का इतना शावर ऊपर से गिरता है तब तो छाता उठा के घूमते हैं कि ऊपर स्पेशल शावर, जहां चाहे वहां पानी गिर सकता है। ये इसको ऐश्वर्य, ये ऐश्वर्य का अर्थ है दिखावा, दिखावे के लिए। तो ऐसा जिसकी भी आसक्ति इसमें है, इस प्रस भोगेश्वर प्रसक्ता नाम का अर्थ है, इसके अलावा और कोई उद्देश्य नहीं है जिसका, वो कभी भी आत्मबोध नहीं हो सकता। आत्मबोध का मतलब उसकी बुद्धि में आत्मा और भगवान की भक्ति कृष्ण भावना का प्रवेश नहीं हो सकता। जो इंद्रिय भोग में लिप्त रहते हैं उनके लिए आत्मबोध प्राप्त कर पाना असंभव है। भगवद गीता में कहा गया है कि जो मनुष्य संपत्ति तथा भौतिक सुख भोग की खोज में आसक्त रहते हैं वे योग समाधि अर्थात कृष्ण भावना में तलीनता प्राप्त नहीं कर सकते। ये आ गया ना भगवद गीता का वही श्लोक, उसी भोग, क्या शब्द लिखा है संपत्ति, ऐश्वर्य का अर्थ यहां लिखा है संपत्ति। संपत्ति का मतलब ज्यादा धन कमाने के लिए जो 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 चेष्टा है अथवा जो दौड़ है वो संपत्ति है, और सुख भोग मतलब इंद्रियों का भोग, और योग समाधि, वहां समाधि शब्द है भगवद गीता में, और प्रभुपद में योग समाधि अर्थात कृष्ण भावना अमृत में तलीनता। तो योग समाधि और कृष्ण भावना अमृत की तलीनता, इसका दोनों का आपस में क्या तालमेल है। योग की समाधि में आदमी क्या करता है, हमारी इंद्रियां और मन की वृत्तियां बाहर दुनिया के चिंतन से हटके अंदर परमात्मा जो हृदय है उसके ऊपर केंद्रित हो जाए, इसको समाधि कहते हैं। ये बंद आंखों से होती है। कृष्ण भावना अमृत की समाधि है भगवान को खुली आंखों से अर्च विग्रह की सुबह उठ के पूजा करना, नहलाने के बाद एक एक अंग के ऊपर ध्यान करके वस्त्र पहनाना, आभूषण धारण कराना, प्रभुपाद जी कहते हैं ये खुली आंखों की समाधि है, ये खुली आंखों से समाधि है। इसमें बाहर का कुछ चिंतन नहीं रहता है, केवल भगवान के श्री विग्रह का बहुत, ये जो पूजा करते हैं भगवान की घर में ये समाधि है और खुली आंखों की समाधि है। मन की सारी वृत्तियां उसी के ऊपर केंद्रित होती है कि कान में ठीक तरह लगाया, कान की चीज फूल कहां ठीक रखा है, ये जो जो पुजारी पूजा करते हैं उनको मालूम है कितनी मेडिटेशन करनी पड़ती है कि हर फिर जाके देखेंगे दूर से ठीक है कि नहीं है। तो ये भक्ति योग का ध्यान है। उसमें इसलिए श्री विग्रह की पूजा विशेष रूप से है कि ये समाधि का अंग है, प्रतिदिन समाधि का अभ्यास है। जो पूजा करते हैं उनको वैसे समाधि है, और जो भक्त दर्शन करते हैं वो खुली आंखों से भगवान का दर्शन करते हैं, ये भी समाधि है कि भगवान का ही चिंतन करते हैं। और दर्शन करने का उद्देश्य और ध्येय ये होता है कि वो भगवान का स्वरूप सारा दिन आज का हमारे हृदय में समाया हो। जब जब समय मिले तब आंखें बंद करके फिर उसी को वापस ध्यान करने का अभ्यास करें। इसीलिए बहुत सारी आरतियों को रखने की आवश्यकता है कि एक बार चलो सुबह भूल गया तो दर्शन आरती मंगल आरती में जो तो ठीक है, दर्शन आरती का दर्शन भूल गया तो फिर भाग के जाना चाहिए 8:15 वाली आरती में। 8:15 वाली आरती का दर्शन में फिर वापस आया और काम में लग गया तो 12 वाले राजभोग पे जाना चाहिए। वहां आधे घंटे की लंबी आरती होती है ताकि आप अच्छी तरह से ध्यान कर लो, और फिर 2-3 घंटे तक 4 बजे फिर आके दर्शन कर लो। इसलिए ये सब आरतियां इसलिए भगवान की है कि भक्तों को दर्शन करने हर आरती में जाना है, अगर कोई और सेवा नहीं है तो। ऐसे नहीं है कि बाहर मशीन का घंट बजाया है, बल बटन दबाओ घंटी बजती है, अंदर आरती हो रही है, आदमी एक भी नहीं मिलता है, आदमी एक भी नहीं है, पुजारी बेचारा वो घंटी ऐसे वो तो आरती को ऐसे घुमा रहा है, बाकी बाहर घंट बज रहे हैं, टेप के अंदर जो कीर्तन चल रहा है, ये तो भूतों की भक्ति है बगैर शरीर के। अदृश्य रूप में बहुत सारे भूत आते हैं, डब्बे के अंदर से आवाज आता है, डब्बे से कीर्तन चलता है, और सभी मंदिरों में प्रायः यही होता है। जागते जीते इंसान बहुत कम होते हैं, ये तो कैसे भी प्रभुपाद कृपा से स्थान के मंदिरों में मंगल आरती में 100-200 आदमी बड़े मंदिरों में मिल जाते हैं। तो हर आरती में उत्साह के साथ भक्तों को जाना चाहिए भगवान के ध्यान के दर्शन के लिए। ये हमारे लिए आरती भगवान दर्शन देने के लिए हमारे लिए, और आरती का भी असल में आरती का अर्थ भी क्या है, हमारी रति हो भगवान में। रति शब्द जो आरती में है, हम आरत हैं और हमारी रति भगवान में हो। हम आरत हैं मतलब हम बहुत दुखी हैं, हमारे को भगवान को नहीं देखते हैं तो संसार में तो दुख ही दुख है, तो हमारी भगवान में रति होनी चाहिए। और ये दीप ऐसे करते हैं कि भगवान का मुखमंडल चरणों से देख के देना, कैसे आरती घुमाते हैं उसको भी ध्यान देंगे तो चरणों को दिखाने के लिए वो चरणों के ऊपर है, फिर ऊपर आएगी, फिर मुखमंडल पे आएगी, फिर पूरे शरीर पे, तो ये भी भगवान के अंग को अपनी पूरी नजर उसके ऊपर केंद्रित करके देखने के लिए। क्योंकि पहले अभी भी जाएंगे दक्षिण मार्ग में मंदिर बने हुए इतने छोटे अंदर कमरे होते हैं कि अंधकार में कुछ दिखता नहीं, तो लाइट नहीं है, तो ये दीप जो घूमता है वो उस अंग के ऊपर घूमता है जिसका आपको ध्यान करना है, उस एक एक अंग का ध्यान करना है उसके ऊपर घूमता है ये भी। और क्यों घुमाते हैं 5 बार इधर 3 बार, कौन से अंग के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। असल में मुख के ऊपर सबसे ज्यादा होता है ये मुखमंडल के ऊपर, लेकिन शुरू चरणों से होता है। तो ये समाधि है, ये रिचुअल नहीं है, ये मन को भगवान के श्री विग्रह के ऊपर इतना केंद्रित करना है कि वो छवि हृदय में बसी रहे। और ये रोज का अभ्यास है, ऐसे नहीं कि हफ्ते हफ्ते आरती करनी है, नहीं, रोज होती है। और रोज की 6 आरतियां जितनी भी होती हैं, ये इतनी बार कम से कम हम भूलकर हैं इतने कि हम 1-1.5 घंटे के बाद भूल जाते हैं। इसलिए हमारे लिए ये रिपीटेशन रूल ऑफ 6, कुछ लोग कहते हैं रूल ऑफ 6 होता है, रूल ऑफ 6 का मतलब है किसी आदमी को कोई काम कहो तो फिर उसको 6 बार कम से कम रिमाइंड कराया करो। क्योंकि आदमी चाहे कितना भी बुद्धिमान हो जरूर किसी वक्त भूल जाएगा। तो रूल ऑफ 6 का मतलब पहले बार कहो ये काम करना है, फिर बोलना आपको मैंने कहा हो तो ठीक है ना, याद है ना ये करना है, फिर बोला तुम वो ये काम भूलना मत, 3 बार तो ऐसे बोलना है, उसमें 4th बार बोलना है जो तुमको कहा था अभी तक नहीं किया क्या, कब करोगे। तो इस रूल ऑफ 6, ये तो 6 आरती से कोई काम आपको ठीक तरह करना है तो 6 बार कम से कम उसको रिमाइंड नहीं कराओगे तो काम ठीक तरह से होगा नहीं। ऐसा भी ऐसा कोई प्रमेय नहीं है एक बार कहने से सब कर ले, चाहे वो कर भी ले, लेकिन आपको अपना दायित्व पूरा करना है कि उसको दोबारा रिमाइंड कराना है। नहीं कराओगे तो काम अधूरा रह जाएगा। और आगे श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो ये विज्ञप्ति करते हैं कि इस जीवन में भौतिक सुख उठाते हुए आत्मिक आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं, वो मात्र अढ़ंबर है। अब ये स्टेटमेंट प्रभुपाद जी की, क्या जो कहते हैं आप इंद्रिय तृप्ति के लिए भी जो चाहे वो करते रहो, घूमो फिरो, खाओ पियो, मौज करो, लेकिन हमारे पास आओ, कथा जरूर सुनो, थोड़ा सा आसन प्राणायाम करो, आपका उद्धार हो जाए, ये केवल अढ़ंबर है। प्रभुपाद जी, ये अढ़ंबर है। अढ़ंबर का क्या अर्थ होता है? दिखावा है, आध्यात्मिकता का दिखावा है। कितना अध्यात्म का दिखावा है? थोड़े दिन पहले एक प्रश्न एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति ने यह प्रश्न पूछा। बुद्धिमान क्या, भारत के उच्च जो है वो आईएएस का रिटायर्ड ऑफिसर कमिश्नर के ग्रेड का प्रश्न पूछ रहा था हमसे कि हमने 50 साल पहले अपने जीवन में देखा है कि इतने ज्यादा मंदिर भी नहीं थे, इतने ज्यादा सत्संग भी नहीं होते थे, लेकिन आदमी सदाचारी और चरित्रवान ज्यादा थे। अब जितने ज्यादा सत्संग हो रहे हैं, जितने ज्यादा मंदिर बन रहे हैं, उतने आदमी ज्यादा ही चरित्रहीन होते जा रहे हैं, इसका क्या कारण है? अच्छा प्रश्न था वो। आपको ऐसे लगता है कि नहीं लगता है, जो थोड़ी उम्र जिनकी बड़ी है उनको पहले इतना दिखावा नहीं था धर्म का, लेकिन लोग धार्मिक थे। अभी धर्म का दिखावा ज्यादा है, लोग धार्मिक बिल्कुल नहीं। हमने उनसे पूछा कि बस संसार की बात ऐसे करते हुए कहा कि भाई पहले मास्टर जी पढ़ाता था तो समाज में उसका बहुत सम्मान हुआ करता था। गांव का मास्टर गांव के चेयरमैन से ज्यादा सम्मान्य हुआ करता था जो पढ़ाता था। वो अगर बाहर जाता था तो सब उठ के खड़े होते थे, दुकान वाले भी जिनके बेटे पढ़ते थे। और गांव का वैद्य या डॉक्टर बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हुआ करता था, सारे शहर उसको सम्मान देता था। और साधु का तो सम्मान हुआ ही करता था। ये तीन व्यक्ति बहुत सम्मान्य हुआ करते थे। क्यों? पढ़ाने वाला मास्टर कभी किसी छात्र से पढ़ाने के पैसे नहीं लेता था। डॉक्टर वैद्य दवाई करता था, जिसको जो दे के जाए वो दे, कोई ऐसा फिक्स फी कोई नहीं था। और प्रचारक तो वैसे भी सबकी सेवा करते थे। अब हमने कहा डॉक्टर जिसको एडमिशन लेने के लिए 25 लाख रुपए देना पड़ता है कॉलेज में, वो जब डॉक्टर बन के आएगा सेवा क्यों करेगा? वो 25 ही पहले पूरा अपना वो तो निकालेगा ना ब्याज के साथ, तो क्यों करेगा सेवा? सीधी सी बात है, प्रैक्टिकल बात है। जो लड़का पढ़ के आ रहा है ट्यूशन 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 ट्यूशन, स्कूल में कुछ नहीं पढ़ता है ट्यूशन के ऊपर, स्कूल की फी 1000 रुपया, ट्यूशन की फी 3000 रुपया, तो उस मास्टर को कौन सम्मान? किसी मास्टर का सम्मान है क्या गांव में? अभी खत्म हो गया कि नहीं हो गया? तो इसके पीछे एक ही उद्देश्य कारण है, और कारण ये, अब जो साधु को आपने कहा कि हमारे यहाँ कथा करना, और कथा वाले ने कहा 7-8 लाख रुपया तो खर्चा हो ही जाएगा, 3-4 लाख रुपया तो कथा वाले को देने पड़ेंगे, बाजे वाले को 2 लाख देने पड़ेंगे, तो वो व्यक्ति जो इतना खर्चा कथा पे किया है वो तो उस कथा से कुछ पैसा ही वापस लेना चाहेगा ना, कथा से कोई भक्ति जोड़ लेना चाहेगा। केवल ये मानसिकता है, एक ही कारण है कि पहले लोग धर्म के सत्संग में अथवा मंदिर में कथा में कुछ पाने जाते थे और मंदिर में कुछ देने जाते थे। अब मंदिर में कुछ लेने जाते हैं और कथा में दिखाने जाते हैं, ये दो ही काम रह गए, दिखावा। और मंदिरों में कुत्ता देखे हाथी मांगना, समझे, कुत्ता देखे हाथी मांगना, 10 रुपया भगवान को देंगे और 10 लाख का बेनिफिट भगवान से लेने के लिए एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे, ये भगवान आपके 10 रुपया चढ़ाते हैं हमारे कारोबार में, इस बार बड़ा अच्छा लाभ होना चाहिए, बड़ा अच्छा लाभ मतलब 2-4-5-10 लाख का लाभ होना चाहिए, कितने के ऊपर, 10 रुपये के ऊपर, 100 रुपया चढ़ाते हैं भगवान हमारा बच्चा मेडिकल में सिलेक्ट होना चाहिए, अरे मास्टर जी को पढ़ाने के रोज के तुम देते हो 500 रुपये और भगवान को 5 रुपये देते हो और कहे तो पाप भी हो जाए, तो ये इसको कहते कुत्ता देके हाथी मांगना, देना कुछ भी नहीं और सब कुछ मांगना। आजकल मंदिर में लोग ऐसे आते हैं जैसे किसी सुपरमार्केट में गए हैं, कुछ लेना है कुछ देना है, जो देते हैं महाराज हमारा ये प्रभु जी हमारे 11,000 रुपये लिखिए दान में, लेकिन उसके साथ एक लंबी लिस्ट भगवान के सामने रखती है कि अपना घर जल्दी हमारा बनना चाहिए, गाड़ी जो नई हमने बुक कराई है वो आनी चाहिए, लड़कों का बिजनेस ठीक चलना चाहिए, वो दूसरी लिस्ट भी देते हैं जैसे दुकान पे, जैसे सुपरमार्केट में यहां से पैसा दो और वहां से सामान उठाओ, तो इसलिए लोगों के चरित्र में कोई परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि कोई देने नहीं जाता है, सब लेने जाते, तो ये धर्म का दिखावा इतना हो रहा है। और वैसे भी चैतन्य चैतन्य रूप गोस्वामी को शिक्षा देते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं प्रयागराज में कि जो धर्मचारी हैं, जो धर्म का दिखावा कर रहे हैं, उनमें से कोई एक आधा होता है जो कर्मनिष्ठ होता है। कर्मनिष्ठ का अर्थ है कि मंदिर में, गांव के मंदिर में रोज के 100 लोग जाते हैं, लेकिन कोई 2 लोग ही होते हैं कम से कम झाड़ू निकालते हैं मंदिर में, ये सत्य है कि नहीं, इतने होंगे ज्यादा होंगे, तो कर्मनिष्ठ तो 2 ही हो गए ना, जो कम से कम किसी काम में तो लगे, चाहे किसी भी इच्छे से लगे कुछ तो कर रहे हैं ना, दूसरे तो आए और चले गए। और इन कर्मनिष्ठों में ऐसे लाखों कर्मनिष्ठ होते हैं, उसमें कोई एक ज्ञाननिष्ठ होता है, ज्ञानवान होता है, इसका मतलब वो बैठ के कथा सुनने की इच्छा करता है कम से कम। लेकिन ऐसे ज्ञानवानों में भी कोई एक होता है जो मुक्ति की इच्छा करता है, कोटि ज्ञानवान मध्य एक मुक्त, कोई एक आधा होता है जो, इसका अर्थ है कथा सुनने वाले बहुत है इसलिए सुनते हैं, आज तो ये बड़ी अच्छी जानकारी हमको मिली, आज हमारे को ये बहुत अच्छी जानकारी मिली, तो जानकारी के लिए सुनते हैं लेकिन भगवान को जानने के लिए नहीं सुनते, अथवा भगवान प्राप्ति के लिए भी नहीं सुनते, इन्फॉर्मेशन के लिए ज्यादा लोग है। आजकल सारा बजवर्ड ही इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अरे इन्फॉर्मेशन को कुछ तो छोड़ो, कुछ रिफॉर्मेशन भी करनी है, केवल इन्फॉर्मेशन करनी है, रिफॉर्मेशन नहीं केवल इन्फॉर्मेशन। और कोटि मुक्त मध्य एक कृष्ण भक्त, ऐसे भी जो साधु संन्यासी बन के पीले गेरू वस्त्र वैरागी हो गए उनमें से भी कोई एक मुश्किल से कृष्ण भक्त होता है, ये रूप गोस्वामी की शिक्षा में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। तो कितने धर्म के धर्मचार, तो बहुत धर्म का पाठ करते हैं। एक दूसरी बात भी है, एक बार इंदौर में वहां का वाइस चांसलर था, कुलपति था, एक समय में डिबेट इस कॉलेजों में की थी प्रभुपाद के जन्म शताब्दी के समय में, भक्ति सामद स्वामी देवामित प्रभु ने उस वक्त में डिबेट की, तो हम गए थे इंदौर में, तो एक वहां का वाइस चांसलर हमसे कह रहा था, ऐसे बात आई के अर्थ और धर्म दो चीजें हैं, जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म और अर्थ दो चीजें हैं, तो उसने कहा अर्थ होता है बाहर लगाने के लिए और धर्म होता है अंदर में अपना सुधार करने के लिए। तो वैसे भी जो जो अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, पैसा बाहर लगाओगे तो आएगा, अंदर रखोगे तो कुछ भी नहीं होगा, और धर्म अंदर रखने के लिए है और अर्थ बाहर लगाने के लिए है, अथवा अथवा धर्म अंतर्मुखी होने के लिए है और अर्थ बाहर पब्लिसिटी के लिए और काम के लिए। फिर उन्होंने हमको उदाहरण देके और फिर कहने का समझाना चाहा कि एक आदमी बीमार हो गया, डॉक्टर के पास गया, बुखार था उसको, तो डॉक्टर ने उसको देखा, लेकिन बुखार के लिए जा रहा था डॉक्टर को दिखाने, रास्ते में बुखार के कारण पांव थोड़ा सा चलते हुए गिर पड़ा और पांव में मोच आ गई, तो पांव में मोच तो आ गई गिरने के कारण और बुखार के लिए दिखाने जा रहा था। डॉक्टर ने देखा तुम्हारे बुखार के लिए ये दवाई है, ये पीने की है और तुम्हारी मोच के ऊपर ये मालिश करने की दवाई। वो घर गया, 7 दिन तक दवाई को लिया, वापस आया, न बुखार गया न दर्द गया। डॉक्टर ने बोला ऐसे तो नहीं हो सकता है। बोला क्या किया? बोला ये जो दवाई है इसको मैंने पिया और ये दवाई इसका बर्तन ने सब उल्टा कर दिया। बुखार की दवाई को पांव पे लगाया और पांव की दवाई को पिया, न बुखार गया न दर्द गया। बोला काम तो किया लेकिन फर्क नहीं हुआ। बोला ऐसे ही आजकल धर्म की निमाइश होती है और पैसा सबका छुपा के रखते हैं। पैसा छुपाते अर्थ को अंदर रखते हैं और धर्म की निमाइश होती है, जिसको प्रभुपद कहते धर्म ध्वजी, धर्म ध्वजा। धर्म की निमाइश होती है, पब्लिसिटी होती है, पब्लिसिटी होनी चाहिए पैसे की, धर्म की पब्लिसिटी होती है और पैसा सबका छुपा हुआ है। कोई पैसा बताता है? इनकम टैक्स से डर से सब जिनके पास इतना पैसा है वो किसी को बताने को तैयार है? नहीं बता देना। छुपाते किसको? पैसे को। छुपाना चाहिए धर्म को और दिखावा किसके करते हैं? धर्म का। तो ये उल्टा है, पैसा बाहर धर्म अंदर, धर्म अपनी साधना है। तो यहां प्रभुपाद जी कहते हैं जो धर्म का दिखावा करते हैं, आध्यात्मिक का दिखावा करते हैं और भोग तृप्ति से, तो वैराग्य का क्या अर्थ है? प्रभुपाद जी यहां कहते हैं वैराग्य का क्या अर्थ है? ये अर्थ हम वैराग्य से पढ़े इससे पहले, वो भगवद गीता का श्लोक, मन कैसे एकाग्र हो, कि वाक योग और मन एकाग्र किए, तो उसके लिए श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को क्या उत्तर दिया? वैराग्य और अभ्यास। वैराग्य न तो अभ्यास में तो कौन थे, वैराग्य न से गिर थे। ये श्लोक को कई साल हम पढ़ते रहे, मेरे को याद है यही श्लोक एक बार पंडरपुर में ये ऐसे का भाई कोई आया था, तो एक हमने कहा भाई अभ्यास का क्या अर्थ है, वैराग का क्या अर्थ है जो श्री कृष्ण यहां कह रहे अर्जुन को? तो वैराग का यहां अर्थ है असल में चार नियमों का पालन करना। वैराग का यहां अर्थ है चार नियमों का पालन करना। बहुत सालों के बाद ये श्लोक का ये हमको अर्थ समझ में आया अपने आप, फिर हमने पढ़ा और आज ये उसी को हम पढ़ रहे हैं। यहां प्रभुपाद जी कहते हैं वैराग्य, वैराग्य के चार तत्व है, अवैध विषयी जीवन से बचना, मांस आहार से बचना, मादिक द्रव्य सेवन से बचना तथा द्रुत क्रीड़ा से बचना। ये चारों तत्व तपस्या कहलाते हैं। ये वैराग्य भी है और तपस्या भी है। तो वो चौथे श्लोक जो भगवद गीता का श्लोक है उसमें वैराग्य है, उसका ये अर्थ है, ये अर्थ करना चाहिए। और अभ्यास का क्या अर्थ है? हरे कृष्ण 16 माला जपना, वो अभ्यास है। कई साल पढ़ने के बाद उस श्लोक का ये अर्थ बहुत एक बार बहुत साल पहले हमको समझ में ऐसे आया कि अभ्यास का मतलब निरंतर अपने नेम वाली माला जपना और वैराग का अर्थ चार नियमों का पालन करना। और यहां प्रभुपाद जी स्पष्ट कह रहे हैं वैराग का अर्थ है इन चार तत्वों को ठीक तरह से पालन करना। और अब अंतिम लाइन इस भावार्थ की आ रही है, आत्मबोध का विधान यह है कि मन को, आत्मबोध का विधान यह है। आत्मबोध का क्या अर्थ है? आत्मबोध मतलब यहां लिखा है स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। स्पिरिचुअल रियलाइजेशन इसका अर्थ है शरीर से आत्मा को अलग समझना। शरीर का बोध तो सबको है ही, वो भी पूरा नहीं है, आधा ही है। अपना आहित शरीर का करते हैं फिर भी समझते हैं कि हम शरीर को जानते हैं, लेकिन आत्मा का बोध उसको यह लिखा है आध्यात्मिक बोध। तो आध्यात्मिक बोध का विधान क्या होता है? विधि विधान, तरीका। विधि विधान दो शब्द हैं, कहीं आपको विधा मिलेगा कहीं विधि मिलेगा, इसमें भी थोड़ा सा अंतर है। दो है, विधि है एक विधान है।
विधि नियम है, विधान जो व्यवस्था है,
विधान यह है कि मन को कृष्ण भावना अमृत में मन को कृष्ण भावना अमृत में, परमेश्वर में तलीन कर दिया जाए, मन को कृष्ण भावना अमृत में परमेश्वर में तलीन किया जाए, इसका क्या अर्थ? जैसे आदमी कोई कहे कि रसगुल्ले को चास में तलीन किया जाए, ये तो आसान है, रसगुल्ले को उठाओ रात चास में डाल दो, तलीन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? रसगुल्ला गुलाब जामुन को, जलेबी को रस में तलीन कर लिया, ये रसामृत, वो तो रस अमृत है, उसमें जलेबी को डालो तो वो तलीन हो गई। अब ऐसे मन को कैसे कृष्ण में तलीन, कृष्ण भावना में तलीन करना है? मन को जलेबी की तरह कोई है तो जलेबी का बाप है, जलेबी टेढ़ी होती है, मन उससे भी टेढ़ा है। जलेबी जलेबी घेवर घेवर एक होता है, उसमें कोई पता नहीं कितने गोल गोल होते हैं, बहुत टेढ़ा है, तो इसको तलीन कैसे करेंगे? अब मन कोई ऐसी वस्तु तो है नहीं, मन तो हम कहते हैं है तो भौतिक, लेकिन पांच जो है वो तो स्थूल है और ये सूक्ष्म है, तो मन दिखता है किसी को? मन देखा है कभी? जब देखा नहीं तो उसको तलीन कैसे करेंगे? भगवान कहते हैं मन मुझे अर्पण करो, अभी मन ऐसे तो है नहीं कि प्लेट के ऊपर रख के भगवान को अर्पण करके आए, जैसे भाई सेब कब सेब भगवान को अर्पण करेंगे, गुलाब जामुन अर्पण करें, मन कैसे अर्पण करेंगे भगवान को? ये प्रश्न है अपने आप में, मन को कैसे कृष्ण भावना में तलीन करना है। तो मन का काम क्या है? संकल्प विकल्प, थिंकिंग विलिंग फीलिंग, ये कृष्ण भावना में लगाना है। जो मन का कार्य है ये कृष्ण भावना में लगाना है, ये मन को कृष्ण भावना में तलीन करना है। संकल्प क्या करना है? भाई किस चीज का? अब संकल्प लोग क्या करते हैं? आज इतना पैसा कमा किया ना, ये संकल्प हो गया ना, आज ये भोग करना है, ये खाना है, पहले सुबह उठते सोचता है ब्रेकफास्ट में क्या संकल्प है, हमारे पास क्या डोसा मिलेगा कि इडली मिलेगी, ये संकल्प हुआ। अब कृष्ण भावना में तलीन करने के लिए क्या होना चाहिए? आज भगवान के बाल भोग में क्या तैयार हो रहा है? अब क्या है वो संकल्प, ये हो गया कि हम तो अभी ब्रेकफास्ट का पूछते हैं कि हमारे लिए क्या हो रहा है, लेकिन मन को कृष्ण भावना में तलीन करना, आज भगवान के बाल भोग में क्या बन रहा है? अब भगवान के 8 बजे वाले भोग में क्या बन रहा है? तो ये मन को तलीन करना, जो हमारी सोच के, जो ये सोच हमारी इन्हीं चीजों को जाती है, खाना क्या है यही हमारा विचार होता है, पहनना क्या है ये हमारी सोच, या जाना कहाँ है, खाना पीना जाना यही हमारी विशेष सोच दिन भर की होती है। तो ये सोच कैसे कृष्ण भावना में, कहाँ जाना है, भागवत क्लास में जाना है, मंगल आरती में जाना है, ये हो गई मन को कृष्ण में, कृष्ण भावना अमृत में तलीन करना। कौन सा भगवान के लिए आज कौन सा फूल मौसम का है वो ले जाना, तो ये कृष्ण भावना में मन को तलीन करना। मन को भगवान में लगाने का अर्थ है मन की वृत्ति। विकल्प कैसे करेंगे मन के भगवान में लगाने का? विकल्प मन तो करेगा ना, तो विकल्प करना चाहिए, मानो कि मेरे को नींद आ रही, अरे नहीं नहीं आज नहीं सोना चाहिए, आज तो भगवान का, आज तो हमको थोड़ा सा भागवत का एक अध्याय पढ़ लेना चाहिए, विकल्प हो गया ना। विकल्प का मतलब जो आपका मन कहता है उसके उल्टा, तो नहीं नहीं अभी नहीं सोना, अभी उठो थोड़ा जप कर लेते, नींद आए तो भी। विकल्प क्या करो? भगवान के सेवा के संबंध किसी काम के विषय में सोचो। तो संकल्प और विकल्प जो मन का काम है, इस काम को कैसे कृष्ण भावना में लगाएंगे, ये इसका अर्थ है। अपने मन को तलीन करो कृष्ण भावना अमृत में, इसका अर्थ है। सुबह से शाम तक जो हमारी सोच है वो कैसे कृष्ण भावना भावित करें, इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। भक्तों के संग में रहते हैं तो यहां अपने आप सुबह घंटी वाला आता है तो मंगल आरती का ध्यान आता है, तो मन को ये सब जो यहां विधियां हैं, ये मन को कृष्ण भावना अमृत में तलीन करने के लिए। प्रसाद तैयार होगा लेकिन भोग लगाना है। ऑलवेज थिंक ऑफ कृष्ण का मतलब क्या है? हर वक्त कृष्ण का कैसे सोचेंगे? मतलब कृष्ण संबंधी कार्यों का सोचना है, कृष्ण संबंधी कार्यों का सोचना है। आज प्रचार करने कहां जाना है, क्या कथा करनी है, कहां से पढ़ना है, प्रभुपाद ने ये कहा था कौन सा लेक्चर पढ़ना, ये कृष्ण संबंधी मन को लगाना है। लेकिन इसके पीछे उद्देश्य क्या होना चाहिए? न भोग होना चाहिए न ऐश्वर्य होना चाहिए। इसके पीछे भी भोग और ऐश्वर्य उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि आज पर प्रोग्राम है, आज बहुत अच्छा दिल्ली में हमारा प्रोग्राम है, और मन में विचार क्या आता है, पनीर की सब्जी तो होगी ही, हाँ कोफ्ते तो जरूर बने होंगे। तो हमारा उद्देश्य क्या है प्रचार में जाने का, भोग। गाड़ी तो उनको बोलो इनोवा से कम में नहीं आएंगे, हम दिखाएंगे कौन सी गाड़ी में जा रहे, ऐश्वर्य होगी। तो वो काम तो जा रहे सत्संग में, लेकिन उसके पीछे हमारा उद्देश्य दिखता है भोग और ऐश्वर्य का। ये बहुत दिखता है शाम, इसलिए प्रगति हमारी कछुए की स्पीड से हो रही है। कछुए की स्पीड से प्रगति क्यों हो रही है, कि ये मन के जो संकल्प विकल्प है वो कृष्ण भावना से थोड़े से हटके। और इसका कारण भी क्या है, जब से इस दुनिया में हम आए हैं उसको कितने कोटि वर्ष होगा उसका पता नहीं, तब से मन तो उन्हीं काम में लगा हुआ था। अब कोई 5-10 साल से हमने मन को यहां लगाने का प्रयास किया है, तो प्रभाव किसके ऊपर मन का है, पुराने संस्कारों का प्रभाव ज्यादा है, पुराने संस्कारों का प्रभाव बहुत ज्यादा है। ये नए संस्कार हम उसके ऊपर डालने का प्रयास कर रहे हैं, और ये तब काम करेंगे अगर भक्तों के संग में होंगे। भक्तों के संग से थोड़े बाहर चले गए तो पुराने संस्कार एकदम हमको दोबारा पकड़ लेंगे। ये पुराने संस्कार हमारे बहुत समय से हैं और नए संस्कार अभी हम डाल रहे हैं, इसलिए उनका प्रभाव बहुत ज्यादा मन के ऊपर पहले से पड़ा हुआ है। कोई चाय छोड़ने वाला, बीड़ी छोड़ने वाला आदमी जो 40 साल से पीता है ना, तो किसी और को पीते हुए देखता है ना, ऐसे उससे धुआं भी सूंघ के थोड़ी देर के लिए तसली करता है कि मैं छोड़ी है तो क्या हुआ, लेकिन धुआं ठीक लग रहा है। एक कभी जोक याद आ रहा है, एक आदमी रोज शराब खाने में जाता था, दो गिलास लेता था, पहले एक पीता था फिर दूसरा पीता था, एक महीने के बाद केवल एक गिलास लेके पीने लगा। तो पिलाने वाले को आश्चर्य हुआ कि कोई इसके घर में मर गया है, हो सकता है पहले किसी का नाम लेके पीता होगा वो मर गया है, तो दुख से पूछा कि भाई पहले आप किसी के लिए एक पीते थे, अब आप एक पीते हैं, कोई चला गया, मतलब चला कुछ नहीं गया, मैं अब इस्कान का भक्त बन गया हूं, इसलिए मैं नहीं पीता हूं भाई वाला पीता हूं, पहले एक भाई का पीता था एक मेरा पीता था, अब मैं भक्त बन गया हूं इसलिए मैंने छोड़ दिया है, लेकिन भाई वाला है। तो ऐसे है कि हम तो भक्त हो गए, लेकिन अब क्या है, भाई के घर में शादी है तो जाना ही पड़ेगा, तो जाना पड़ेगा तो उधर कुछ भी खाना नहीं पड़ेगा। तो ये जो इसके पीछे कुछ चीजें हैं, इसलिए हमारा जो प्रगति है वो स्लो हो रही है। तो यहां ऋषि जो पैदा किए हैं ब्रह्मा जी ने, उसमें विशेष रूप से प्रभुपाद जी ने वैराग्य के ऊपर बहुत बल दिया है, और ये संदेश हम भक्तों के लिए है कि किसी भी तरीके से चेतन महाप्रभु की शिक्षा सर्वभौम भट्टाचार्य के शब्दों में, निज वैराग विद्या भक्ति योग, निज वैराग विद्या देने के लिए चेतन महाप्रभु आए थे, वैराग्य विद्या चेतन और चेतन महाप्रभु के जो निज परिकर थे 6 गोस्वामी और 6 ही भगवान की कृपा से संपन्न परिवार के, और बहुत बड़े ऐश्वर्य पद को छोड़कर ब्रज के अंदर वैराग का जीवन बिताने लगे थे आकर। तो ये बात स्पष्ट रूप से दिखने में आ रही है कि चेतन महाप्रभु का उद्देश्य वैराग विद्या देने का और निज भक्ति योग, निज का मतलब अपनी श्री कृष्ण भक्ति, चेतन महाप्रभु की भक्ति, वो देने के लिए आए थे। और यहां ब्रह्मा जी ने भी ऋषियों को उत्पन्न किया तो वैराग के लिए उत्पन्न किया। ये सारे ऋषि जितने रहे, कुटियाओं में रहे, नदियों के किनारे पे रहे, चाहे राजा महाराजा इनके चरणों में आकर बैठते थे, सम्राट इनके चरणों में आकर बैठते थे, और दिग्विजयी महाराजा राजा महाराजा इनके चरणों में बैठते थे, लेकिन ये अपनी कुटिया में उसी 2 जोड़े कपड़े के अंदर, एक कपड़ा कंधे के ऊपर और एक धोती के ऊपर अपना जीवन निर्वाह करते थे। तो ये वैराग जो है ये राजा को भी झुकाता है, और भोग जो है अपने आप को समय के साथ झुका देता है। भोग वाला आदमी झुक जाता है, वैराग वाले के पास दुनिया झुकती। तो ये आज के श्लोक का संदेश है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्णा। हलचल जल्दी हो गई, इसमें तो 50 मिनट ही हुए। हरे कृष्णा।